लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, म्यांमार में एक सदी से भी अधिक समय से सबसे बड़ा भूकंप। संयुक्त राष्ट्र ने इस दोहरे भूकंप को इस तरह परिभाषित किया जिसकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई, जिसका केंद्र मंडाले और संगाइंग शहरों में था, जो शुक्रवार 28 मार्च को देश में आया था। भूकंप से अब तक 3085 लोगों की मौत हुई। जुंटा नेता मिंग आंग हलाइंग ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। 4715 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 440 से ज्यादा लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मी प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। म्यांमार इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, मगर पड़ोसी देश थाईलैंड के बैंकॉक में निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत के ढहने से मरने वालों की संख्या 21 तक पहुँच गयी है, जबकि नष्ट हो चुकी इमारत के मलबे में फंसे लगभग 80 निर्माण श्रमिकों के बारे में चिंता जताई जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
म्यांमार का मंडाले शहर इस भूकंप का केंद्र था। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.7 वाले इस भूकंप में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। भूकंप के झटके चीन, थाईलैंड और भारत में भी महसूस किए गए हैं। आपात राहत मामलों में समन्वय के लिए यूएन अवर महासचिव टॉम फ्लेचर ने बताया कि यूएन सहायता कर्मियों को जरूरी समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय आपात राहत कोष से जीवन रक्षक राहत कार्यों के लिए $50 लाख की धनराशि मुहैया कराई गई है। इस आपदा में मंडाले प्रांत में भारी क्षति हुई है। आसपास के कई इलाकों में नुकसान होने की आशंका जताई गई है। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस में कार्यरत मैरी मेनरिक ने कहा कि इमारतों व बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान के अलावा बांध के टूटने का भी जोखिम है। देश के कुछ हिस्सों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। म्यांमार में रेड क्रॉस सोसाइटी ने हालात का जायजा लेने और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के इरादे से एक आपात अभियान शुरू किया है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार गृह युद्ध और एक विशाल मानवीय संकट से जूझ रहा है। देश की करीब एक तिहाई आबादी 2 करोड़ लोगों को इस वर्ष मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि राहत प्रयासों के लिए म्यांमार और थाईलैंड में देशीय टीम के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। सहायता अभियान संचालन के लिए दुबई में अपने लॉजिस्टिक हब को सक्रिय कर दिया है, जिसके जरिए स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप चिकित्सा मदद प्रदान की जाएगी।
गाजा में 2 महीने तक युद्ध विराम जारी रहने के बाद पिछले करीब 2 सप्ताह से इजरायली सैन्य बलों ने अपनी बमबारी फिर शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा में भीषण हिंसक टकराव के कारण मृतकों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने 18 मार्च को इसराइल व हमास के बीच युद्ध विराम दरक जाने के बाद फिर शुरू हुई बमबारी में महिलाओं व बच्चों समेत 1000 लोगों के मारे जाने की खबरों की निंदा की है। आपात राहत मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक ने 23 मार्च को दक्षिणी गाजा में इजरायली सैन्य बलों की गोलीबारी में 8 चिकित्सा कर्मियों, 6 नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ताओं और 1 यूएन कर्मचारी के मारे जाने की घटना पर क्षोभ व्यक्त किया है और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। गाजा संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कर्मियों ने चेतावनी दोहराई है कि गाजा पट्टी में घातक बमबारी और पिछले करीब 4 सप्ताह से मानवीय सहायता आपूर्ति पर इसराइली पाबंदी के बीच जीवन रक्षक राहत सामग्री समाप्त हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गुरुवार को आगाह किया था, हिंसाग्रस्त गाजा पट्टी में खाद्य सामग्री की किल्लत है, सीमा चौकियां बंद है और सहायता काफिलों का प्रवेश न हो पाने से लाखों फलस्तीनियों पर भूख व कुपोषण का शिकार होने का जोखिम मंडरा रहा है। गाजा से लगी सीमा के बाहर 85,000 टन खाद्य सामग्री को तैयार रखा गया है ताकि सीमा चौकियों के खुलने की स्थिति में उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचाया जा सके। गाजा में स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार 18 से 23 मार्च के दौरान इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई में कम से कम 830 लोगों की जान गई है। मानवीय सहायता मामलों में समन्वय के लिए यूएन कार्यालय के प्रवक्ता येंस लार्क ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, युद्ध के जिन तौर तरीकों को हम देख रहे हैं उनमें अत्याचार अपराधों के चिन्ह देखे जा सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे और आम नागरिक इजरायली बमबारी में मारे गए हैं। घनी आबादी वाले इलाके और अस्पताल फिर से रणभूमि में तब्दील हो गए हैं। गाजा में 2 महीने तक युद्ध विराम जारी रहने के बाद पिछले करीब 2 सप्ताह से इजरायली सैन्य बलों ने अपनी बमबारी फिर शुरू की है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी क्षोभ जताया है कि हालात जैसे युद्ध विराम से पहले थे अब भी उतने ही खराब हैं। यूएन एजेंसी ने सभी गाजा वासियों की भलाई के लिए नए सिरे से युद्ध विराम को जल्द से जल्द लागू किए जाने की अपील की है।
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने देश में बढ़ती हिंसा और प्रथम उपराष्ट्रपति रिएक मचार को हिरासत में लिए जाने की खबरों के बीच सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति समझौते को बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने दक्षिण सूडान में तेजी से बिगड़ रहे हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत संवाद स्थापित करने और 2018 में हुए शांति समझौते पर नए सिरे से प्रतिबद्धता जताए जाने की पुकार लगाई है। साथ ही उन्होंने हिरासत में लिए गए अधिकारियों की तत्काल रिहाई पर बल दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि दुनिया का सबसे नया निर्धनता से घिरा देश दक्षिण सूडान संकटों की चपेट में है। दक्षिण सूडान ने जुलाई 2011 में सूडान से स्वाधीनता हासिल की थी, उसके बाद से ही ये टकराव और अस्थिरता से जूझ रहा है। दिसंबर 2013 में राष्ट्रपति सल्वा कीर के वफादार सैन्य बलों और उनके विरोधी के समर्थकों में गृह युद्ध भड़क उठा था जिसमें हजारों लोगों की जान गई। कई वर्षों तक जातीय हिंसा, सामूहिक अत्याचार और मानवीय संकट जारी रहने के बाद 2018 में नाजुक हालात में एक शांति समझौते पर सहमति हुई और एकता सरकार का गठन हुआ, मगर हाल के दिनों में फिर से परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच झड़पें तेज हुई हैं और आम नागरिकों पर हमले हुए हैं। बुधवार को मुख्य विपक्षी नेता और प्रथम उपराष्ट्रपति रिएक मचार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम से शांति प्रक्रिया को गहरा धक्का पहुंचने और लाखों लोगों के लिए खतरा उपजने की आशंका है। यूएन प्रमुख ने कहा कि दक्षिण सूडान आपात स्थिति, राजनीतिक उठापटक, मानवीय और विस्थापन संकट और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है और देश में सहायता के लिए धनराशि की किल्लत है। इसके मद्देनजर उन्होंने दक्षिण सूडान के नेताओं से हथियार छोड़ने का आग्रह किया और ध्यान दिलाया कि देश के लोगों और उनके हितों को प्राथमिकता दी जानी होगी।
कूड़े कचरे से मानवीय स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर बद से बदतर हो रहे प्रभावों के मद्देनजर हर वर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कचरे की रोकथाम करने, उसे कम करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर सर्वजन को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस के सिलसिले में यूएन महासभा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्सटाइल उद्योग, फैशन व कपड़ों की अनियंत्रित खपत का पर्यावरण पर गंभीर असर हो रहा है, जिसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सुन ले प्रभु मेरी
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में परम धर्म पीठी कार्यालयों में सेवारत धर्माधिकारियों के लिए जारी चालीसा कालीन आध्यात्मिक साधना के अवसर पर प्रवचन करते हुए उपदेशक फादर रोबर्टो पाजोलिनी ने प्रभु येसु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के आनंद पर चिंतन किया। फादर पाजोलिनी ने कहा कि पुनरुत्थान की ओर देखने का अर्थ है स्वयं को दुख और मृत्यु के भय से अभिभूत न होने देना, बल्कि अपनी दृष्टि उस लक्ष्य पर स्थिर रखना जिसकी ओर येसु मसीह का प्रेम हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि जीवन की परिपूर्णता की ओर ले जाने वाले मसीह के द्वार को पार करने के लिए एक बहुमूल्य बलिदान की आवश्यकता है, जो है इस विश्वास को त्यागना कि असफलताओं और पराजय से एक भरोसेमंद हृदय के साथ उठना असंभव है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि पुनरुत्थान में विश्वास कर हम फिर से शुरू करने और दूसरों के लिए खुलने के लिए तैयार हों, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है तथापि हमारे बीच के बंधन को तोड़ नहीं सके। उन्होंने कहा कि सुसमाचारों में सबसे बड़ा आश्चर्य यह नहीं कि ईश पुत्र येसु ख्रीस्त मुर्दों में से जी उठे, बल्कि उन्होंने किस तरीके का चयन किया जिससे हमें इस बात का एक अद्भुत साक्ष्य मिला, और वह यह कि किस प्रकार प्रेम एक बड़ी हार के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ ताकि वह अपने अजय पथ पर आगे बढ़ सके। प्रवचनकर्ता ने कहा कि पुनरुत्थान को प्रेम के अनुभव के रूप में देखा जाए, न कि ईश्वर की ओर से शक्ति के कार्य के रूप में। उन्होंने कहा कि प्रेम की तर्कणा में हम समझ सकते हैं कि क्यों येसु को स्वयं को मनुष्यों पर थोपने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, बल्कि स्वयं को प्रस्तावित करते रहने की तीव्र इच्छा हुई। जैसा कि कुरिन्थियों को प्रेषित पहले पत्र के 13वें अध्याय के 5 से लेकर 7 तक के पदों में संत पॉल लिखते हैं, प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता, क्रोध नहीं करता, प्राप्त की गई बुराई का हिसाब नहीं रखता, सब कुछ सह लेता, सब कुछ पर विश्वास करता, सब बातों की आशा करता और सब बातों में धीरज धरता है। म्यांमार में मंडलय के महाधर्माध्यक्ष मार्को टिन विन ने 28 मार्च के भूकंप के बाद मची तबाही के बारे में वेटिकन की सुसमाचार प्रचार संबंधी प्रेस एजेंसी फिदेस से बातचीत में कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी म्यांमार के लोगों में आशा की कमी नहीं आई है, इसलिए कि येसु ख्रीस्त के पुनरुत्थान में उनका अटल विश्वास है। महाधर्माध्यक्ष मार्को टिन विन ने कहा, पीड़ा पहले से कहीं अधिक ज्यादा बढ़ गई है, फिर भी हमारे लोग ईश्वर की दया और उनके प्रेम की निश्चितता में आशा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की त्रासदी ईश्वर की ओर से एक ऐसा संदेश है जो हमारी मानवीय बुद्धि और समझ से परे है। हमारा एकमात्र तरीका है कि हम खुद को उनके दयालु प्रेम के हवाले कर दें और ईश्वर की मुक्ति योजना में अपनी आशा की पुष्टि करें। मंडलय के महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि 28 मार्च के भयंकर भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में बिजली और टेलीफोन कनेक्शन रुक रुक कर काम कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है। म्यांमार की स्थानीय स्थिति और मंडलय के लगभग 20,000 कैथलिकों की भावना का अवलोकन करते हुए महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। स्वयं महाधर्माध्यक्ष महाधर्म प्रांत के कुरिया के पुरोहितों के साथ मिलकर बेघर लोगों के भाग्य को साझा कर रहे हैं, इसलिए कि महागिरजाघर और महाधर्माध्यक्ष निवास को भी भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि हजारों लोगों को सुरक्षा कारणों से सड़कों पर रातें बितानी पड़ रही हैं, लोग अभी भी सदमे में हैं और भयभीत हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि अकेले हमारे मंडलय क्षेत्र में 1,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 2,200 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 200 लापता हैं। गौरतलब है कि 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 3,000 पार कर गई है। रोम में संपूर्ण विश्व से सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड SVD अर्थात दिव्य शब्द धर्म समाज के 200 से अधिक मिशनरी विद्वान धर्मशास्त्री और पुरोहित धर्म समाज की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिशन सम्मेलन के लिए 27 से 29 मार्च तक परम धर्म पीठीय ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में एकत्र हुए थे। आज के विश्व में मिस्यो देई घावों को भरना, उत्तर आधुनिकता द्वारा चुनौती, संस्कृतियों से सीखना, धर्मों से प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन ने तीव्र गति से खंडित और घायल दुनिया में कलीसिया के मिशन के लिए धार्मिक अंतर्दृष्टि और प्रेरितिक चिंतन को प्रस्तुत किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिकागो में कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन के प्रोफेसर फादर स्टीवन बेवेंस एसवीडी ने मिशन के मूल को त्रिएक ईश्वर के झरने जैसे प्रेम के रूप में दर्शाया। सृष्टि के आरंभिक बिंदु से लेकर प्रभु येसु ख्रीस्त के देह धारण तक उन्होंने चंगाई प्रदान करने, सबको एकत्र करने और नवीकृत करने के दिव्य आवेग के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए प्रतिभागियों से ईश्वर की योजना में वफादार भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि हमें सत्य को धारण करने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि हर जगह से हर किसी के लिए प्रकाश की गवाही देने के लिए बुलाया गया है। इसी मिशनरी भावना को परम धर्म पीठीय सुसमाचार प्रचार के प्रो प्रीफेक्ट कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले ने अपने प्रभाषण में प्रतिध्वनित किया। उन्होंने शिष्यों के सामने पुनर्जीवित येसु के प्रकट होने के सुसमाचारी दृश्य को याद किया और कहा कि वे निंदा के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ आते हैं। दक्षिण अमरीका के करीबियाई सागर स्थित द्वीप हेती में सेवारत संत तेरेसा को समर्पित धर्म संघ की दो धर्म बहनों की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि देश के प्रमुख गिरोहों को एक साथ लाने वाले गठबंधन वीवर एंड स्लेम्बल ने देश पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के प्रयास के जवाब में हिंसक हमला शुरू कर दिया है। वीवर एनसेम्बल गिरोह गठबंधन ने सोमवार को राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से लगभग 60 किलोमीटर दूर मिरेब्लेस के उपनगर पर हमला किया और सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बावजूद अभी भी शहर पर इसका नियंत्रण बना हुआ है। हेती में घबराई हुई जनता शहर से भागकर पास के गांवों में शरण ले रही है। हिंसा की इस लहर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें संत तेरेसा को समर्पित धर्म संघ की दो धर्म बहनें सिस्टर इवानेट ओनेजायर और सिस्टर जेने वोल्टेर भी शामिल हैं, जिनकी पहचान पोर्ट ऑफ प्रिंस के महाधर्माध्यक्ष मैक्स लेरॉय मेसिडोर ने की है। स्थानीय समाचार पत्र हेटियन टाइम्स के अनुसार वीवर एनसेम्बल के सदस्यों ने मिराबिलेस जेल पर धावा बोलकर कम से कम 500 कैदियों को मुक्त करा लिया। राष्ट्रीय पुलिस के साथ लड़ाई में कम से कम 30 बंदी मारे गए। मिरेबेलेस को हेती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहां विश्वविद्यालयीन अस्पताल है जो करीबियाई देश का सबसे उन्नत अस्पताल है और प्रतिदिन हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।